आज है 11 नवंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारत और जापान ने किए ऐतिहासिक असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर। सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने पर सपा और बसपा ने किया हमला तो बीजेपी ने दिया आज जवाब।
मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, राजनीति स्वच्छ होगी।
और आज विवेचना में बात करेंगे भारतीय राजनीति के तेज तर्रार और हाजिर जवाब सांसदों में से एक रहे पीलू मोदी की।
पीलू मोदी साहब ने बैज बनवाए और खुद अपने बैज लगा के IMCIA एजेंट पार्लियामेंट में पहुंच गए और पूरी चीज का मजाक बना दिया।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। टोक्यो में एक वार्ता के बाद भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत को जापान ईंधन, उपकरण और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करेगा जो भारत तेजी से बढ़ती जनसंख्या की बिजली आपूर्ति के लिए चाहता है। ये समझौते सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हैं। अगर भारत 1998 की तरह कोई परमाणु परीक्षण करता है तो जापान इस समझौते को तोड़ सकता है, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए जापान में कुछ सामाजिक समूह इस समझौते के खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराकी सेना के मूसल के नज़दीक पहुंचने पर मूसल के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में IS के अत्याचारों के नए सबूत मिले हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर ने सूत्रों के हवाले से कहा कि IS ने उन नागरिकों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गोली मार दी और फिर इन लोगों को के शव इलाकों में लटका दिए। IS ने कहा कि इन लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए इराकी सेना को जानकारी लीक की थी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उनके पास सबूत हैं कि IS ने बच्चों को आत्मघाती हमलावर के तौर पर तैनात किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि मूसल में विद्रोही गुट संभावित रासायनिक हमले के लिए सल्फर और अमोनिया इकट्ठा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता रवीना श्याम दसानी ने कहा, बुधवार की रात खबरें आई कि ISIL ने उत्तरी मूसल के घाबात सैन्य अड्डे पर 20 नागरिकों को सेना को सूचना देने के आरोप में गोली मार दी और उनके शवों पर चिट्ठी लगाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में लटका दिया। उन्होंने विस्फोटक बेल्ट बांधकर किशोर और युवा लड़कों को आत्मघाती हमलावरों के तौर पर तैनात किया है। ये थे रवीना श्याम दसानी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका में ओरेगन शहर के पोर्टलैंड में पुलिस ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। पुलिस का कहना है कि दंगा ना भड़के इसलिए ये कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि भीड़ में मौजूद अराजक लोगों ने पुलिस पर मिसाइलें फेंकी और कारों और दुकानों पर हमला किया। उन्होंने BBC को बताया कि प्रदर्शनकारी आम लोग ही थे जो ट्रंप के कुछ कदमों से डरे हुए थे। पोलैंड ने वारसा में उस राष्ट्रीय मंदिर के उद्घाटन के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जिसके निर्माण का निर्णय संसद ने करीब 200 साल पहले लिया था। मंदिर की आधारशिला रखने समय भी तय किया गया था, लेकिन एक रूसी हमले ने निर्माण को असंभव बना दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद इसे बनाने की फिर से योजना बनाई गई थी, लेकिन 1939 में जर्मनी के हमले के बाद इस परियोजना को रोक दिया गया था और उसके बाद 2002 के अंत में इसके निर्माण का काम शुरू हुआ था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत और जापान ने 6 साल तक चली गहन वार्ताओं के दौर के बाद ऐतिहासिक असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये समझौता टोक्यो में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की जापान यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी ने इस बारे में और जानकारी देते हुए कहा,
टुडेज साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक इस्तेमाल में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए आज जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, यह दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्षेत्र में हमारा सहयोग हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझने में भी मदद करेगा। मैं समझता हूं कि जापान के लिए भी इन मसलों पर यह समझौता खास महत्व का है। मैं प्रधानमंत्री आबे, जापान की सरकार और संसद का इस समझौते को दिए गए सहयोग के लिए शुक्रिया करता हूं।
जापान और भारत ने किया सैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर, ये थे नरेंद्र मोदी के शब्द। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद जापान भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर, ईंधन और तकनीक दे सकेगा। हालांकि भारत के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने को लेकर टोक्यो में इस समझौते को लेकर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। टोक्यो में राजनीतिक दलों के साथ साथ लोग नई दिल्ली से ये आश्वासन चाहते हैं कि वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन ये समझौता दोनों देशों के लिए कितना अहम है, यही जानने के लिए मैंने टोक्यो फोन कर प्रोफेसर मुकेश विलियम से बात की।
हिंदुस्तान के लिए ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इससे काफी फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जापान हिंदुस्तान के साथ जो आर्थिक व्यापार है वो फिलहाल बहुत अच्छा नहीं है। 215 और 216 के बीच में जो व्यापार हुआ है वो 14.5 बिलियन US डॉलर का हुआ है जापान और हिंदुस्तान के बीच, जिसमें 6.5% गिरौती हुई है। इंडिया और चाइना का जो समझौता है, जो बिजनेस है, आर्थिक व्यापार है, वो 70 बिलियन डॉलर का है और जापान और चाइना का 350 बिलियन की लागत का है। तो इससे आपको एहसास हो रहा है कि किस तरीके का बिजनेस हमारा है। मगर जो ये न्यूक्लियर परमाणु का सिविल जो समझौता हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो लागत टोटल, हम इसको जो मार्केट न्यूक्लियर मार्केट कहते हैं, वो 150 बिलियन US डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं जहां हमारा व्यापार 14.5 बिलियन डॉलर का है वो उछल के 150 बिलियन का हो जाएगा, ये खुशी की बात है। मगर इसके बाद कई समस्याएं आ रही हैं इसके अंदर।
विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है विकास स्वरूप, उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच पिछले दिसंबर में ही मोटे तौर पर समझौता हो गया था और ये कहा जा रहा है कि समझौते से, परमाणु समझौते से जापान जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल और तकनीक जो है वो सप्लाई कर सकेगा। लेकिन जैसा कि आप भी बात कर रहे थे कि अभी इसे संसद में जाना है, तो कितना आसान देखते हैं इसका रास्ता?
रास्ता मुश्किल नहीं है शिंजो आबे के लिए, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसको, ये समझौते को ऊपर न लाके इसको निर्यात बाजार, एक्सपोर्ट मार्केट के बीच छुपा कर कि हमारी पॉसिबिलिटी जापान इन्वेस्टमेंट की इंडिया में बहुत है, और इसको बीच में लगा के कि भाई निर्यात बाजार के बीच में लगा के जापानी मीडिया को इसको ना सर्कुलेट करे और इसको पास कर दें तो पास हो जाएगा, ये उम्मीद है हमें कि पास हो जाएगा। जो लोग हैं वो कई बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि 70% जो आम जनता है वो न्यूक्लियर के खिलाफ है, आप तो जानते हैं ये, और घबराहट बहुत है उनको कि भाई ये इसमें अगर मान लीजिए कोई समस्या हो गई, कोई कांड हो गया, तो उसको आप कैसे समझाएंगे, संभालेंगे। दूसरा, जब हिंदुस्तान ने ये आश्वासन दिया है कि वो कोई नया परमाणु नहीं एक्सप्लोड करेगा, नहीं चलाएगा, मगर अगर कुछ ऐसी बात हुई तो इसको बंद कर देंगे, ये क्लॉज है जो कि वो चाह रहे थे इसके अंदर लगाएं, जो आप पता है आपको, मगर वो दूसरे डॉक्यूमेंट में लगा रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये, हिंदुस्तान में बहुत उल्लास है इसके बारे में और जापान में घबराहट है।
ये बताइए कि दोनों देशों को इससे फायदा कितना होगा?
अगर ऊपर से देखा जाए तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, पावर प्लांट जैसे जीई हिटाची है, तोशिबा है, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, मित्सुबिशी है, अरीवा है, ये सब को फायदा होगा। इन कंपनियों का जो ग्रोथ है बहुत कम है। भारत की बात की जाए तो बहुत बढ़िया, स्पेंट फ्यूल को आप उससे फिर से बना सकते हैं और उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और आपके 6-7-8 जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सिविलियन यूज के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें कितनी जरूरत है ये इलेक्ट्रिसिटी की, देख रहे हैं हालत बुरी है, और क्लीन एनर्जी है बिल्कुल।
परमाणु समझौते से दोनों देशों को होगा फायदा, ये थे टोक्यो से प्रोफेसर मुकेश विलियम्स। और भारत के साथ परमाणु करार करने वाले अन्य देशों में अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया समेत 11 देश शामिल हैं। 500 और 1000 के नोटों को बंद होने को लेकर एक ओर लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर इसके पीछे राजनीतिक कारण भी तलाशे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह और बसपा सुप्रीमो मायावती इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग कह रहे हैं कि इस फैसले से गरीब लोगों की हालत खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ज़रूर है कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां ज़रूर गरीब हो गई हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
पिछले तीन दिनों से आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक चर्चा का मुद्दा सिर्फ एक है और वो है काला धन सफ़ेद धन। हर व्यक्ति नोटों के बंद होने के बाद हो रही समस्याओं का जिक्र कर रहा है, अपने अनुभव सुना रहा है या फिर इस पर बने चुटकुलों का आनंद ले रहा है। वहीं राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले के पीछे विधानसभा के चुनाव को भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को पत्र लिखकर अपील की है कि लोगों को कुछ और मोहलत दे दी जाए। पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव कल ही अपील कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
जब घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो उन रियायतों के बारे में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी अस्पताल, इनके बारे में सोचते हुए पहले ही रियायत दे दी है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी अन्य रियायत की जरूरत है।
उधर बीएसपी नेता मायावती भी कल इस बारे में सरकार को जमकर कोस चुकी हैं और आज उन्होंने फिर बयान जारी कर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार ने ऐसा चुनावी लाभ के लिए किया है और परेशान आम आदमी हो रहा है। पार्टी प्रवक्ता संजय वाजपेयी कहते हैं,
इससे उनका जनमानस जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, ये सब बहुत परेशान है। बिल्कुल सामान्य वर्ग का आदमी लाइन में लगा हुआ है, जो गाली दे रहा है, जो कहना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय लिया है। बिल्कुल थोड़ा टाइम देना चाहिए था सरकार को। राजनीतिक वजह हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो परेशानी किसको है, आम जनता को है ना सर। आज ये स्थिति है कि बाजारों में कोई व्यापारी लेने को नहीं तैयार है।
सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीति की बात कल समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव भी कर चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की।
जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को, कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे, राजनीति स्वच्छ होगी।
यही नहीं, प्रदेश बीजेपी के नेता भी इस मामले में सरकार की पीठ ठोंक रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक का दावा है कि पूरी जनता सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है।
सरकार ने देश के को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फैसला किया है, न कि यूपी चुनाव को देखते हुए फैसला किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों की अपनी परेशानी है और वो जनता के नाम से बयां कर रहे हैं। पूरा देश का आम जन इस फैसले का स्वागत कर रहा है। थोड़ी उनकी परेशानी जरूर है, पर इससे निजात मिलेगी और इन परिस्थितियों में से देश सशक्त होकर उभरेगा।
विजय बहादुर पाठक का ये भी दावा है कि लोगों को कुछ दिन की और थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। बहरहाल फैसले के स्वागत के बारे में तो लोगों से पूछने पर ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक परेशानी और समस्याओं की बात है तो उसे सड़कों पर निकलने के बाद साफ देखा और समझा जा सकता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बीबीसी इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगाई रोक। विपक्षी पार्टियों ने की सरकार के कदम की आलोचना, लेकिन क्या केवल इस कदम से काले धन को समाप्त करने में लगेगी लगाम? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? शनिवार यानी 12 नवंबर को इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। पीलू मोदी की गिनती भारतीय संसद के सबसे तेज तर्रार और हाजिर जवाब सांसदों में होती थी। पेशे से आर्किटेक्ट, पीलू मोदी स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और अपनी विनोद प्रियता के लिए मशहूर थे। वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के जिगरी दोस्त थे और उन पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जुल्फी माई फ्रेंड। पीलू मोदी की 90वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों को याद कर रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में।
एक ऐसे लोकतंत्र में जो दल व्यवस्था पर आधारित होता है, संसद अक्सर दबाव और तनाव के बीच काम करती है, लेकिन इसके बावजूद हाजिर जवाबी, वाक्पटुता और मजाहिया आदान प्रदान के उदाहरण यदा कदा मिल ही जाते हैं। पीलू मोदी इन सब के चैंपियन थे। 70 के दशक में भारत में जो कुछ भी गलत हो रहा था उसका ठीकरा अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सिर फोड़ने का एक फैशन सा बन चुका था। पीलू मोदी ने आओ देखा न ताओ, वो एक दिन राज्यसभा में अपने गले में एक प्ले कार्ड लटकाए पहुंच गए जिस पर लिखा था IMA CIA एजेंट। पीलू मोदी को नजदीक से जानने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान याद करते हैं।
उनकी खूबी ये थी कि खुद अपना मजाक बनाते थे। रियल ह्यूमर होता है वो यही होता है जहां आदमी खुद अपने आप अपना मजाक बना सके। जैसे मिसाल के तौर पे एक जमाने में लीडरों में एक होड़ लगी हुई थी कि कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो कहते थे कि ये CIA का काम है। तो पीलू मोदी साहब ने बैज बनवाए और खुद अपने बैज लगा के IMCIA एजेंट पार्लियामेंट में पहुंच गए और उस पूरी चीज का मजाक बना दिया।
पीलू मोदी की विनोद प्रियता का ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व में गंभीर नहीं था। पीलू मोदी को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय सांघवी बताते हैं।
सबसे पहले उनके बारे में ये कहूँगा कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। उनके पास में ह्यूमर विनोद बहुत था लेकिन वो स्वभाव से बहुत गंभीर भी थे और राजनीति को बड़ी गंभीरता से देखने वाले इंसानों में से एक वो थे। सबसे पहली बार उन्होंने चौधरी चरण सिंह को जब लोकदल में ज्वाइन हुए, स्वतंत्र पार्टी को मर्ज कर दिया, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये बताया था कि चौधरी साहब हमको सबसे पहले गाँव के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने चाहिए। तो चौधरी साहब हंसने लग गए, बोले पीलू आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं चौधरी साहब, आप गांव में बड़े हुए हैं लेकिन आपने एक बात नहीं देखी कि ये पब्लिक टॉयलेट्स के अभाव के कारण हिंदुस्तान के गरीब महिलाओं के मेटाबॉलिज्म में जो फर्क पड़ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको यही काम करना पड़ेगा। तब चौधरी चरण सिंह को लगा कि ये तो बहुत गंभीर किस्म का आदमी है और वह हंस भी देते थे कभी कभी। जब चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद में कुछ बता रहे थे तो पीलू मोदी ने उनके मुंह पे कह दिया, चौधरी साहब आपके लिए तो हिंदुस्तान यहाँ से झांसी तक है, उसके आगे तो आपको पता ही नहीं है कुछ।
राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी का विरोध करने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे,
बहुत अच्छे मित्र थे और इंदिरा गांधी पीलू मोदी की किसी स्पीच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी पीलू मोदी बोलने वाले होते थे तो इंदिरा जी जरूर अपने हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में आके बैठ जाती थी और भाषण सुनने के बाद में वो अपने हाथ से चिट्ठी लिख के भेजती थी, पीलू बहुत अच्छा है, और पीलू मोदी उसको जवाब भी देते थे PM। तो एक बार इसी तरह के दो नोकझोंक दोनों के बीच में चल रही थी तो एक में इंदिरा गांधी ने लिखा PM, तो पीलू मोदी ने फिर से वापस जवाब दिया कि IMPM बट परमानेंट, यू आर टेम्पररी। इंदिरा जी हंसने लगी, बोले ये कैसे। तो बोले PM मतलब होता है पीलू मोदी।
आरिफ मोहम्मद खां बताते हैं कि 1969 के कांग्रेस विभाजन के दौरान इंदिरा गांधी उन्हें अक्सर अपने पास बुलाया करती थी।
जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, उस वक्त इंदिरा जी ने एक स्लिप भेजकर पार्लियामेंट में पीलू मोदी साहब को अपने पार्लियामेंट के ऑफिस में बुलाया। तो पीलू मोदी साहब कहते हैं कि वो इस कदर इतनी चार्मिंग थी और इतना उनका आकर्षक व्यक्तित्व था कि बोले कि फिर मुझे उसी हफ्ते में तीसरे दिन फिर बुलाया और बोले अपने हाथ से चाय बना के दी वगैरह वगैरह। जमाना था जब इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में थी, जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो विपक्ष में उस वक्त लोग थे, पीलू मोदी साहब ने भी यही समझा और मुझे लगता है ठीक ही समझा उन्होंने कि इंदिरा जी उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही। ये पीलू मोदी साहब ने मुझसे खुद कहा है कि तीसरी बार जब मुझे उन्होंने एक स्लिप भेज के और अपने दफ्तर में बुलाया, मैंने जाने से मना कर दिया। और जब वो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पीलू आप आए नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ अगर तीसरी बार मैं आपसे मिलने आता तो मैं आपको सपोर्ट करने लगता। तो ये जुमला पीलू मोदी साहब ही कह सकते थे।
एक बार पीलू मोदी को पता चल गया कि इंदिरा गांधी संसद में बहस के दौरान क्रॉसवर्ड पजल हल करती हैं।
इंदिरा जी जब भी 4 बजे आती थी तो वो साथ साथ में इवनिंग न्यूज के क्रॉसवर्ड लेके आती थी और मेरी सीट थी वो एग्जैक्टली अपोजिट थी। तो इंदिरा गांधी जो या प्राइम मिनिस्टर जो भी करते थे वो मुझे सब दिखाई पड़ता था ऊपर से। और इंदिरा जी जब वो क्रॉसवर्ड पजल भरती थी और मुझे भी बड़ा क्रॉसवर्ड पजल भरने का शौक था तो मैं देखता था, मुझे बड़ी जलन होती थी कि इंदिरा जी 4 बजे लेके आती है और मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, ये कैसे है। तो मैंने पीलू मोदी से बात की, पीलू मोदी ने कहा अगली बार वो भर रही होगी तो तुम बता देना। तो मैंने अपना बेंच गिराया, आवाज़ हुई, पीलू मोदी को बता दिया कि वो क्रॉसवर्ड भर रही है। तो पीलू मोदी खड़े हो गए, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो स्पीकर संजीव रेड्डी थे, उन्होंने कहा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देयर इज नो मैटर ऑन हैंड. तो बोले नो सर, आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन एनी मेंबर फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल्स इन द हाउस. तो इंदिरा जी ने नीचे से शौ करके रह गई और चुपचाप बैठी रही. थोड़ी देर के बाद में पीलू मोदी को उन्होंने चिट्ठी भेजी, हाउ डिड यू नो. पीलू मोदी ने जवाब लिखा, आई हैव माय स्पाइज ऑल ओवर.
1975 में आपातकाल में अन्य विपक्षी नेताओं की तरह पीलू मोदी को भी गिरफ्तार कर रोहतक जेल भेज दिया गया. वहां सबसे बड़ी समस्या थी पीलू मोदी की पसंद का शौचालय न होना. पीलू को नजदीक से जानने वाली मालविका सिंह अपनी किताब परपेचुअल सिटी ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ दिल्ली में लिखती हैं,
जब पीलू मोदी को 26 जून 1975 को गिरफ्तार कर रोहतक जेल भेजा गया तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब था वहां पश्चिमी स्टाइल के कमोड का ना होना. उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेशा भेज अपनी परेशानी बताई. उसी शाम बैठकर पॉटी करने वाली जगह के दोनों ओर सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनवाया गया ताकि पीलू को शौच क्रिया में कोई तकलीफ ना हो. इंदिरा गांधी की शख्सियत की ये अजीब बात थी कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में भेजने के बावजूद उनसे हमेशा संपर्क में रहती थीं।
रोहतक जेल का ही एक दिलचस्प किस्सा विजय सांघवी सुनाते हैं, जब वो पीलू के पास उनके कुत्तों को लेकर जाया करते थे.
जब पीलू मोदी जेल के अंदर ले जाए गए तो उसके बाद में वो अकेले रहते थे, तो मैं उनके तीन कुत्ते थे बहुत अच्छे, सबसे छोटा था छोटू और दूसरे, तीनों के तीनों आयरिश सेटर थे. उन तीनों को मैं लेके जाता था, बड़े फेरोशियस डॉग्स थे. रोहतक के जेल में जाता था कुत्तों को लेके, और जैसे कुत्ते दिखाई पड़ते थे तो जो सेंट्रीज जो होते थे वो सब भाग जाते थे और मैं और पीलू मोदी अकेले बैठ के बात करते थे. तो मैं उनको बताता था, टू माई सरप्राइज पीलू मोदी और बाकी के जो इनमेट्स थे वहाँ पे प्रिजनर पॉलिटिशियन, वो सबको बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में पूरा पता था. मैं अपने साथ साथ में उनका खाने पीने का भी सामान ले जाता था और बहुत सारी किताबें लेके जाता था. तो बहुत सारी किताबों के ऊपर अशोक मेहता के, बिजू पटनायक के, उन लोगों के सिग्नेचर्स है कि तुमने अच्छा काम किया हम लोगों को.
पीलू मोदी बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे. लोग उनकी दावतों में शामिल होना अपनी खुशकिस्मती समझते थे. मशहूर पत्रकार सुनील सेठी को कई बार उनके घर खाने पर जाने का सौभाग्य मिला था.
मैं पार्लियामेंट कवर करता था 70s और 80s में, इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले, और काफी बार मैंने उनको इंटरव्यू किया. एक दो बार उन्होंने मुझे घर पे खाने पे भी बुलाया. बहुत क्रिस्प सफेद स्टार्च्ड कल्च लगा हुआ, हमेशा सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते थे और सफेद शॉल पहनते थे, और उनकी मेहमान नवाजी कोई नहीं भूल सकता. क्या खाना खिलाते थे, चाहे पारसी खाना हो, चाहे यूरोपियन फूड हो, चाहे हैदराबादी हो, उनको खाने का बहुत शौक था. और उनकी सबसे यादगार ये है कि ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर. बहुत मजाक करते थे पार्लियामेंट में भी और बाहर भी. बहुत आर्टिकुलेट और ओपिनियनेटेड इंसान तो थे ही, मगर बहुत पर्सनली वो शौकीन और रंगीन इंसान थे. ही वॉज अ लीडर ऑफ द पारसी कम्युनिटी. बहुत पढ़े लिखे थे. देहरादून के मशहूर डून स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी. फिर उसके बाद आर्किटेक्चर पढ़ने गए अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया. मगर शुरू से उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत था.
पीलू की पूरी कोशिश रहती थी कि विजय सांघवी भी उन्हीं की तरह मांसाहारी भोजन का लुत्फ उठाएं, लेकिन सांघवी इसके लिए तैयार नहीं होते थे.
मैं जैन होने के वजह से बिल्कुल मैं वेजिटेरियन आदमी था. कभी मैंने नॉन वेज नहीं खाया था और पीलू मोदी हमेशा मुझे नॉन वेज खिलाने की कोशिश करते थे. कभी कभी वो खुद अच्छा बनाते थे, चिकन बनाते थे, वो कहते विजय ये खा लो तुम. मैं कहता था नहीं. 1971 के वॉर में मुझे जाना पड़ा अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर. पहले दिन मैंने काम कर लिया और काम करने के बाद में जब मैं वापस लौट मेस में आया तो मैंने देखा तंदूरी चिकन के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ है, तो मैं खाए पिए बगैर वापस चला गया. दूसरे दिन वही 9:30-10 बजे पहुंचा तो मेस के अंदर ब्रेड थी, न कोको कोला था, न कंपा कोला था, कुछ नहीं था, और तंदूरी चिकन रखे हुए थे. मैं निकलने लगा, जनरल केपी कैंडिडेट थे उन दिनों के अंदर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आई डोंट वॉन्ट ए सिख जर्नलिस्ट ऑन माई हैंड बिकॉज आई एम फाइटिंग अ वॉर. इफ यू डोंट ईट दिस आई एम गोइंग टू डिस्पैच यू बैक टू दिल्ली. और मुझे बड़ा डर लगा कि मुझे अगर ये डिस्पैच करके वापस भेज देंगे तो सब लोग तो यही समझे कि मैं वॉर के डर से भाग के आ गया हूँ, तो मैंने चिकन के 3-4 पीस खा लिए। आने के बाद में पीलू मोदी को मैंने बताया कि ये हो गया, तो पीलू मोदी ने इमीजिएटली जुल्फिकार अली भुट्टो जो उनके सहाध्यायी थे बर्कले यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको खत लिखा, कांग्रेचुलेशंस, व्हाट आई कुड नॉट अचीव इन 4 years यू अचीव्ड इट इन 24 hours।
पीलू मोदी के सबसे नजदीक दोस्त थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों न सिर्फ मुंबई में साथ साथ बड़े हुए थे बल्कि अमरीका में साथ पढ़े भी थे। जब भुट्टो जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत करने भारत आए तो उन्होंने पीलू मोदी से मिलने की इच्छा प्रकट की। पीलू शिमला पहुंचे और शिमला बातचीत के दिलचस्प पहलुओं का जिक्र उन्होंने अपनी किताब जुल्फी माई फ्रेंड में किया।
एक क्षण के लिए जब बिलियर्ड्स रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला तो ये दृश्य कैमरे में कैद करने लायक था, लेकिन सैकड़ों फोटोग्राफरों की उपस्थिति के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। मैंने देखा जगजीवन राम बिलियर्ड्स की मेज पर बैठे हुए थे और मेज पर झुकी हुई इंदिरा गांधी शिमला समझौते के मसौदे से माथापच्ची कर रही थी। चौहान और फखरुद्दीन अली अहमद भी मेज पर झुके हुए थे और उन सबको नौकरशाहों के समूह ने घेर रखा था। 10:45 पर जब भुट्टो और इंदिरा गांधी समझौते पर दस्तखत करने के लिए राजी हुए तो पता चला कि हिमाचल भवन में कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ही नहीं है। आनन फानन में ओबेरॉय क्लार्क्स होटल से टाइपराइटर मंगवाया गया। तभी पता चला कि पाकिस्तानी दल के पास उनकी सरकारी मुहर ही नहीं है, क्योंकि उसे सारे सामान के साथ पहले ही पाकिस्तान भेजा जा चुका था। अंततः शिमला समझौते पर बिना मुहर के ही दस्तखत हुए। समझौते से पहले मैंने देखा कि कुछ भारतीय अफसर साइनिंग टेबल पर मेजपोश बिछाने की कोशिश कर रहे थे और हर कोई उसे अलग अलग दिशा में खींच रहा था। उन्होंने सारे इंतजामों की बार बार जाँच की, लेकिन जब समझौते पर हस्ताक्षर करने का वक्त आया तो वहां रखा कलम चला ही नहीं। भुट्टो को किसी और का कलम इस्तेमाल करना पड़ा।
जब पीलू मोदी संसद में भाषण देते थे तो उनके विरोधी भी पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनते थे। चुहलबाजी और मजाक करने की उनकी अदा के भी लोग कायल थे।
जब हम प्रेस गैलरी के अंदर बैठते थे तो उस वक्त में जो बेंच होता था उसको गिरा देते थे, तो कुछ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो ऊपर देखते थे। ऊपर देखने के बाद में हम इशारे से उनके साथ में बात कर लेते थे। उन दिनों के अंदर हम लोगों को जो पार्लियामेंट का कवरेज होता था उसके अंदर हम स्पीचेस के ऊपर कम ध्यान देते थे और नीचे जो एक्टिविटीज़ जो होती थी उसके वजह से नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका पता करने के लिए उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता था। श्यामनंदन मिश्रा जो अपोजिशन के लीडर थे, एक बार डिप्लोमेटिक गैलरी के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या आके बैठी हुई थी, शी वाज़ द डिप्लोमेट, वो आके बैठी हुई थी और श्याम बाबू लगातार वो लड़की की तरफ देखे जा रहे थे। तो मैंने बेंच गिरा के कहा, पीलू मोदी दिनेश सिंह जी के साथ में बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा ये क्या माजरा, तो मैंने इशारा किया श्याम बाबू की तरफ और फिर डिप्लोमेटिक गैलरी की तरफ। तो पीलू मोदी ने जोर से कहा, श्याम व्हाट आर यू डूइंग, तो श्याम बाबू जेब गए देख लिया, फिर उन्होंने पूछा वो कैसे तुमको पता लगा, बोले ये नहीं बताऊंगा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना कल सुबह 8 बजे विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। टोक्यो में एक वार्ता के बाद भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि आईएस ने उन 20 नागरिकों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गोली मार दी जिन्होंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी। उसके बाद उनके शवों को मूसल के कई इलाकों में लटका दिया और कहा कि इन लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए इराकी सेना को जानकारी लीक की थी। अमेरिका के ओरिगॉन शहर के पोर्टलैंड में पुलिस ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाईं। पुलिस का कहना है कि दंगा ना भड़के इसलिए ये कार्रवाई की गई। पोलैंड ने वारसा में उस राष्ट्रीय मंदिर के उद्घाटन के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जिसके निर्माण का निर्णय संसद ने करीब 200 साल पहले लिया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने एक भाषण में चेतावनी दी है कि वो देश को विभाजित करने वाले प्रयासों का विरोध करेंगे। ये बयान हांगकांग में आज़ादी समर्थक 2 सांसदों के शपथ लेते वक्त चीन के साथ निष्ठा रखने से इनकार करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। तुर्की के अधिकारियों ने एक प्रमुख विपक्षी अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। उन पर वह जर्मनी से लौटे थे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके अखबार पर राष्ट्रपति के खिलाफ लिखने के लिए आलोचना की गई थी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।